ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्कंद पहला अध्याय 6 श्लोक क्रमांक 4। प्राकल्प विषयामेताम् स्मृतिं ते मुनिसत्तम न ह्येष व्यवधात् काल एष सर्व निराकृतिः। अनुवाद और तात्पर्य एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा। हे महामुनि, समय आने पर काल हर वस्तु का संहार कर देता है, अतएव यह कैसे संभव हुआ कि यह विषय जो ब्रह्मा के इस दिन के पूर्व घटित हो चुका है, अब भी आपकी स्मृति में काल द्वारा अप्रभावित जैसा का तैसा बना हुआ है। तात्पर्य, जिस प्रकार भौतिक शरीर के विनाश के बाद भी आत्मा नष्ट नहीं होती, उसी तरह आध्यात्मिक चेतना भी नष्ट नहीं होती। श्री नारद ने पूर्व कल्प में जब उन्हें यह शरीर प्राप्त था, तभी यह आध्यात्मिक चेतना विकसित कर ली थी। भौतिक शरीर की चेतना का अर्थ है भौतिक शरीर द्वारा अभिव्यक्त की गई आध्यात्मिक चेतना। यह चेतना निकृष्ट, विनाशशील तथा विकृत होती है, लेकिन आध्यात्मिक स्तर पर अति मानस की पराचेतना आत्मा के समान होती है और कभी विनिष्ट नहीं होती। ओम अज्ञानतिमिरान् प्राकल्प विषयामेताम् स्मृतिं ते मुनिसत्तम न ह्येष व्यवधात् काल एष सर्व निराकृति। हे महामुनि, समय आने पर काल हर वस्तु का संहार कर देता है, अतएव ये कैसे संभव हुआ कि यह विषय जो ब्रह्मा के इस दिन के पूर्व घटित हो चुका है, अब भी आपकी स्मृति में काल द्वारा अप्रभावित जैसा का तैसा बना हुआ है। हमारे मंदिर के एक ब्रह्मचारी कुछ सालों पहले एक गीता कोर्स कॉलेज में वो ले रहे थे, रूपरेल कॉलेज में, और गीता कोर्स में वो बता रहे थे किस प्रकार से शरीर नश्वर है और हमारा जो आत्मा है वो नित्य है, और किस प्रकार से आत्मा विभिन्न प्रकार के शरीर धारण करता है कर्म के अनुसार। तो इस बात को सिद्ध करने के लिए वो कह रहे थे कि जैसे हम कहते हैं कि आत्मा और शरीर, इनका भेद कैसे जाना जा सकता है, विभिन्न प्रकार से जाना जा सकता है। जैसे हम जब कहते हैं कि ये मेरा हाथ है, ये मेरा शरीर है, मेरी आंखें हैं, तो श्रील प्रभुपाद जी इस उदाहरण को लेकर समझाया करते थे कि किस प्रकार से हमारा शरीर आत्मा से अलग है, इसलिए हम कहते हैं कि ये मेरा शरीर है, मैं शरीर से अलग हूं, भिन्न हूं। और इस बात को सिद्ध करने के लिए हम ये भी मुद्दा कहते हैं कि किस प्रकार से कई व्यक्ति जो हैं इस मनुष्य जीवन में, वो अपना पूर्व जन्म भी याद रखते हैं। और अक्सर भारत में ये विशेष रूप से देखा गया है कि कई लोग, कई ऐसे उदाहरण मिले गए हैं, पाए गए हैं, जिन्होंने अपना पिछला जीवन उनको याद आया है। हालांकि कई बार सिनेमा में बहुत दिखाया जाता है ये कि प्रेमी प्रेमिका वो अपना पिछला जन्म याद कर रहे हैं, कैसे पिछले जन्म में भी वो प्रेमी प्रेमिका थे और कैसे वो वादा करते हैं कि आगे 7 जन्म तक हम एक साथ प्रेमी प्रेमिका रहेंगे, पता नहीं कौन से योनि में, परंतु एक साथ रहेंगे। तो कई बार लोग ये कहते हैं कि ये सब मनगढ़ंत बातें हैं कि कौन व्यक्ति अपना पिछला जन्म याद रख सकता है। हमें इस जन्म में कुछ याद नहीं कि हम बचपन में क्या कर रहे थे जब हम 5 साल के थे, 4 साल के थे। हालांकि श्रील प्रभुपाद जी एक बार वो श्रुत कीर्ति प्रभु को कह रहे थे कि श्रील प्रभुपाद जी को याद है जब वो 6 महीने के थे, अपनी माता की तरफ वो देख रहे थे। ये दिव्य व्यक्ति के गुण हो सकते हैं, परंतु साधारणतः ये नहीं पाया जाता है कि कोई व्यक्ति की स्मरण शक्ति विशेष रूप से कलयुग में इतनी तीव्र हो कि वो अपना पिछला जन्म भी याद रख सके। तो पिछला जन्म किस प्रकार से वो याद रख सकता है, वहां पर इनके लिए चटाई नहीं डाला, किसी को चटाई डालना चाहिए माताओं के लिए। पिछला जन्म याद रख सकते हैं केवल क्योंकि हमारा आत्मा नित्य है, उसी के वजह से। तो ये भक्त इसको उदाहरण लेकर कह रहे थे कि कैसे वैज्ञानिक लोग आजकल वो इसका निरीक्षण कर रहे हैं। अमेरिका में एक वैज्ञानिक है इयान स्टीवनसन, जिन्होंने ये पूर्व जन्म स्मृति इसकी स्टडी की है और एक किताब भी इस वैज्ञानिक ने निकाली है जिसके अंदर 2000 से अधिक पूर्व जन्म स्मृति के उदाहरण पेश किए हैं। और ये व्यक्ति, ये वैज्ञानिक कि एक शिष्या भारत में भी है और बैंगलोर में हम उनसे मिलने भी गए थे। हम जब बैंगलोर गए थे कुछ साल पहले तो उनसे मिलने गए थे और उस व्यक्ति ने भी हमको यही बताया कि किस प्रकार से सबसे ज्यादा अधिक ये पूर्व जन्म स्मृति के केसेस भारत में पाए गए हैं। अन्य देशों के अलावा भारत में सबसे अधिक ये केसेस पाए गए हैं। और क्यों पाए गए हैं, क्योंकि भारत में थोड़ा अधिक देह आसक्ति रहती है और देह आसक्ति से ज्यादा परिवार से आसक्ति। तो ये जितने भी उदाहरण थे इस किताब में इस वैज्ञानिक के, वो सारे उदाहरण यही थे कि किस प्रकार ये व्यक्ति अपने परिवार से आसक्त थे। तो पाश्चात्य देश में तो परिवार नाम की कोई चीज है नहीं, तो इसलिए वहां पर आसक्ति क्या रहेगी। इसलिए हमारे एक भक्त बता रहे थे कि जब कोई व्यक्ति को ब्रह्मचारी बनना होता है तो पाश्चात्य देश में क्या तकलीफ होती है ब्रह्मचारी बनने के लिए और भारत में क्या तकलीफ होती है। वो कह रहे थे कि पाश्चात्य देश में क्या तकलीफ है, महापाप, कि महापाप के कारण वो ब्रह्मचारी नहीं बन पा रहे क्योंकि इतना पाप किया है कि उसकी आसक्ति रह जाती है। और भारत में महापाप नहीं बल्कि मां बाप, ये तकलीफ है। तो ये अधिकतर ये सारे उदाहरण पूर्व जन्म स्मृति के ज्यादातर भारत में पाए गए क्योंकि परिवार से इतनी आसक्ति रहती है। तो हमारे वक्त बता रहे थे कि ये वैज्ञानिक इयान स्टीवनसन ने इस प्रकार से स्टडी किया है और एक किताब निकाली है और उनकी एक शिष्या भारत में सत्वंत पसरीचा बैंगलोर में एक इंस्टीट्यूट में वो सेवाव्रत है इसमें। तो वो जब ये उदाहरण दे रहे थे तो ऑडियंस में से एक स्टूडेंट खड़ा हुआ और उसने कहा कि मैं एक उदाहरण हूं उस किताब में। अब सोचिए कि अब हम यदि एक उदाहरण इस प्रकार से दे रहे हैं, और कोई है यहां पर जो उस किताब में से कोई उदाहरण हो यहां पर बैठा हुआ, परंतु वो स्टूडेंट उस कॉलेज का, अब कई बार स्टूडेंट दूसरों पर रोब जमाने के लिए इस प्रकार से कह देते होंगे, परंतु इस स्टूडेंट ने पेपर के क्लिपिंग्स लेकर आए और वो किताब में कहां पर उसका उदाहरण उल्लेख किया गया हो सब दिखाने लगा। उसका नाम है दीप कपाड़िया, अब भी वो मुंबई में रहता है। पिछले साल वो हमारे गीता कोर्स में उसको बुलाया गया था। इस ये जो सेशन है आत्मा का सेशन, इसमें वो अपना उदाहरण सुना रहा था। अभी तो खैर वो बड़ा हो गया, उसका जन्म हुआ बांद्रा सेंट्रकुस में बॉम्बे में, और वो बता रहा था कि जब वो 3.5 साल का था तो वो अलग प्रकार की भाषा बोलना शुरू किया, और वो बताने लगा कि किस प्रकार से वो उदयपुर का रहवासी है। तो उनके परिवार में से, उनके वंश में से कोई आज तक उदयपुर गया नहीं था, और ये 3.5 साल का दीप कपाड़िया वो कह रहा था कि किस प्रकार से वो उदयपुर का रहने वाला है, और उदयपुर में एक म्यूजियम का वो सिक्योरिटी ऑफिसर है। यहां तक वो ये सब चीजें कह रहा था। तब सोचिए 3.5 वर्ष का बालक यदि घर में ये सब चीजें कहने लगे कि वो किस प्रकार कहां का रहने वाला है, और वो कोई सिक्योरिटी ऑफिसर है किसी म्यूजियम में, पैलेस में, तो माता पिता परेशान हो जाएंगे। तो माता पिता को लगा, हरे कृष्णा, कि कोई साइकेट्रिक केस है, तो उसे एक साइकेट्रिस्ट के पास ले गए, मनोवैज्ञानिक उसके पास लेकर गए। तो उसे तो इस प्रकार का भान हुआ कि हो सकता है ये पूर्व जन्म की स्मृति हो रही हो इस बालक को, क्योंकि उसी आयु में पूर्व जन्म की स्मृति होने की आशंका है। तो फिर ये सत्वंत पत्रिका बैंगलोर में जो इनकी इंस्टीट्यूट है वहां पर भेजा गया, और पूरी टीम लेकर वो लोग आए, और उन्होंने फिर इसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए उन्होंने इस दीप कपाड़िया को कहा कि हम तुम्हें दिल्ली ले जाएंगे घुमाने के लिए, और कहा नहीं कि दिल्ली उदयपुर द्वारा ले जाया जाएगा उसे। तो उसे उदयपुर द्वारा ले जाया गया दिल्ली, और जैसे ही वो गाड़ी में जा रहे थे, जैसे ही उदयपुर पहुंचे, उदयपुर शहर, तो तुरंत वो पहचान गया। तो वो जानना चाहते थे कि देखते हैं कह रहा है तो पहचानता है क्या उदयपुर शहर को। तुरंत वो पहचान गया उदयपुर शहर को, और उतर गया गाड़ी से, और वो सबको गाइड करने लगा कि कौन सी गली में, कहां पर उसका घर कहां है उसका, वो कौन से म्यूजियम में सिक्योरिटी ऑफिसर था, वहां पर ले गया सबको। तो ये 3.5 साल का बालक वो सबको लीड कर रहा है, और सब उसके पीछे पीछे, और वहां पर उसने बताया कि उसको यहां तक याद था कि कौन सी चाबी कौन से कमरे के लिए है, क्योंकि वो सिक्योरिटी ऑफिसर था, तो उसने बताया कि किस प्रकार से कौन सी चाबी कौन से कमरे के लिए है। उसने कहा कि पहले ये महल था, और महल को फिर म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया, उसकी हत्या की थी किसी ने। तो वहां तक भी उनको इतना विश्वास नहीं हो रहा था कि ये वास्तविक रूप में सिक्योरिटी ऑफिसर था कि नहीं यहां पर। तो उसने एक दीवार पर एक पेंटिंग लगाई हुई थी, उसने कहा कि इस पेंटिंग को निकालो, इसके पीछे एक दरवाजा है। तो तुरंत वो पेंटिंग को निकाला गया, और उसके पीछे एक दरवाजा था, वो दरवाजे से अंदर ले गया सबको। वहां पे एक पुराना अंग्रेजों के जमाने का एक पंखा जो केरोसिन पर चलता था, वो पंखा था। तो उसने कहा केरोसिन लेकर आओ, और उसने चलाकर वो पंखा, किसी को पता नहीं था वो पंखा चल भी सकता है क्या, केवल इसको पता था कि वो गुप्त वहां पर एक कमरा है, क्योंकि वो एक महल था तो एक गुप्त कमरा था, वहां से यदि कोई शत्रु प्रहार करता है तो भागने के लिए, तो गुप्त कमरा, उसके अंदर वो केरोसिन से चलने वाला पंखा, ये सब वो लोग सब देख रहे थे तो आश्चर्यचकित हो गए। और फिर सबसे बड़ी आश्चर्य की बात थी कि उसने फिर कहा कि अब मेरे घर चलो, तो अपने घर ले गया, और अपने घर ले गया, और छोटा सा 3.5 साल का, 3.5 साल का इतना ही बड़ा होता है शायद, हाँ वो कितने साल का है, 4.5, वो थोड़ा बड़ा है, वो देखिए वो 4.5 का है, तो 3.5 साल का ये दीप कपाड़िया अपने घर में जा रहा है अब, और उसकी जो पिछले जन्म की पत्नी, वो कह रहा है, और उसके बच्चे जो बड़े बड़े हो गए उसके बच्चों को बता रहा है, ये इसका ये नाम है, इसका ये नाम है। तो वहां पर भी ये उनका जो परिवार, वो पूरा परिवार अब डर गया कि क्या कोई हमारे जायदाद हड़पने के लिए ये लोग आए हैं क्या, कह रहे हैं कि ना ये हमारे पिताजी थे और पिछले जन्म में, अब ये तो जो पुत्र था उसको भी विश्वास नहीं हुआ। तो पुत्र ने कुछ ऐसे प्रश्न पूछे जो केवल वो पुत्र और उसके जो पिता थे जो मर चुके थे उनको मालूम था। वो कुछ राइफल शूटिंग किया करते थे, वो सिक्योरिटी ऑफिसर था तो राइफल शूटिंग किया करता था। तो इसने पूछा कि बताओ राइफल कहाँ रखते थे तुम, तो तुरंत सीढ़ी चढ़कर ऊपर के कमरे में गया, ऊपर के कमरे में उसने एक अलग दूसरी पेंटिंग थी उसको निकाला, उसके पीछे वो राइफल थी, और वो राइफल के अंदर कैसे वो गोली डाली जाती है वो सब उसे पता। तो इस व्यक्ति ने ठीक ठीक जो कुछ उसे याद आ रहा था, और फिर जैसे जो वो बड़ा हुआ तो कलयुग का प्रभाव उसके ऊपर आता गया, स्मरण शक्ति गई उसकी, और अभी उसे कुछ इतना याद नहीं कि और क्या क्या वो किया करता था। तो जब कलयुग में ये बंबई के शहर में ये संभव है कि कोई व्यक्ति अपना पिछला जन्म याद कर सकता है, तो यहां पर व्यासदेव जी अचरज कर रहे हैं नारद मुनि को ये प्रश्न पूछते हुए कि किस प्रकार से आप याद रख पाए कि इतना काल बीत गया। ये यहां पर वो कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी का एक दिन बीत गया, और ब्रह्मा जी का एक दिन कितना होता है उसकी गणना यदि हम करें कि ब्रह्मा जी का एक दिन कितना होता है, कलयुग 4,32,000 वर्ष, उसका दुगना द्वापर युग, द्वापर युग का दुगना त्रेता युग, त्रेता युग का दुगना सतयुग, और ये सबको यदि एक साथ ऐड किया जाए तो उसे कहते हैं एक महायुग, और वो एक महायुग को 1,000 से उसकी गणना की जाए तो वो है ब्रह्मा जी के 12 घंटे। और ऐसे ब्रह्मा जी के 24 घंटे होते एक दिन में, और ऐसे ब्रह्मा जी 100 वर्ष तक जीते हैं। तो एक ऋषि थे, इनका नाम था लोमस ऋषि। ये लोमस ऋषि ये एक बार तपस्या कर रहे थे, और इनके जो शिष्य थे इन्होंने देखा कि हमारे गुरु महाराज कड़ी धूप में बिना किसी सहारे के ये तपस्या करते हैं, तो कम से कम इनके लिए भजन कुटीर बना देते हैं, अब भजन कुटीर नहीं तो एक झोपड़ा तो बना देते हैं ताकि धूप से बचे ये, तो वो झोपड़ा बना रहे थे उनके लिए। तो लोमस ऋषि ने आंख खोलकर देखा कि उनके शिष्य क्या कर रहे हैं, बोले गुरु महाराज आपके लिए एक झोपड़ा बना रहे हैं ताकि ये धूप से आप बच सकें। तो लोमस ऋषि ने उनको कहा कि ये जीवन क्षण भंगुर है, अब हमें इसमें इतना आश्चर्य नहीं होगा कि हम भी कहते हैं जीवन क्षण भंगुर है, परंतु लोमस ऋषि ने जब कहा जीवन क्षण भंगुर है, तो वो आश्चर्यजनक बात थी, क्योंकि लोमस ऋषि को यह वरदान मिला था कि लोमस ऋषि की मृत्यु होगी जब उनके शरीर का एक एक बाल नीचे गिर जाएगा, और उनका शरीर का एक बाल गिरेगा, ब्रह्मा जी का एक दिन बीतेगा तब। जब ब्रह्मा जी का एक दिन पूरा होता है, अपने हमने उसकी गणना की, तो लोमस ऋषि का एक शरीर का बाल नीचे गिरता था। तो ब्रह्मा जी तो केवल 100 वर्ष जीते हैं, यहां पर लोमस ऋषि, और कहा गया लोमस ऋषि के शरीर पर बहुत से बाल थे। तो वो अपने शिष्यों को कह रहे थे कि जीवन क्षण भंगुर है, ये झोपड़ा बनाने के लिए क्यों समय बर्बाद कर रहे हो, ये जीवन क्षण भंगुर है। तो हमें जान लेना चाहिए कि हमारे इतने इतनी योजनाएं होती हैं कि यहां पर एक घर होना चाहिए, वहां पर एक फ्लैट होना चाहिए, और कितना समय एक व्यक्ति इस भौतिक संसार में बिताता है अपना एक घर बनाने के लिए। हाँ? मेरा एक घर होगा अपना। हाँ? बंबई में हम देखते हैं लोग पागल रहते हैं कि कहीं पर एक बंबई शहर में यदि एक घर मिल जाए, और कितने करोड़ों रुपए खर्चा करते हैं। तो यहां पर हम ये चर्चा कर रहे थे कि ब्रह्मा जी का एक दिन बीत गया, परंतु फिर भी नारद मुनि की जो स्मरण शक्ति है वो उसी प्रकार जैसे कि तैसी थी। और यही यहां पर व्यासदेव जी वो अचरज कर रहे हैं कि आपको किस इतनी स्मरण शक्ति आपकी कैसे रही। सबसे पहले तो नारद मुनि कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, नारद मुनि भगवान के नित्य पार्षद हैं, और नारद मुनि वो अपने स्वयं की कथा यहां पर बता रहे हैं व्यासदेव जी को। ये नहीं कि वो अहंकारवश अपना गुणगान चाहते हैं, इसलिए व्यासदेव जी को कह रहे हैं कि इसको भी छापो भागवत में, ताकि आने वाली पीढ़ी जो भी पढ़ती रहेगी वो मेरे विषय में उनको पता लगेगा कि नारद मुनि कौन थे। इसके लिए नहीं, वो व्यासदेव जी को इसलिए अपने बारे में बता रहे थे ताकि व्यासदेव जी भक्ति की महिमा जान पाए। नारद मुनि यहां पर आगे कहते हैं कि क्योंकि मैंने उन भक्ति वेदांती से सुना था, उनकी सेवा की थी, उनसे श्रवण किया था, इसीलिए उनकी कृपा से मेरे अंदर वो स्मरण शक्ति आई थी, और यही भक्ति मार्ग की विशेषता है कि भक्ति मार्ग में, एक तो भक्ति मार्ग इतना सरल है, और दूसरा भक्ति मार्ग इतना प्रभावशाली है। इस भौतिक संसार में देखिए, कोई मार्ग बहुत सरल होगा, जैसे अब देखिए कोई विद्यार्थी जब किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाता है, तो यदि वो जब देखता है कि यहां पर सब पूरा कोर्स बहुत सरल है, तो बहुत सरल जब कोर्स होता है, तो उसके साथ साथ हमें क्या पता लगता है कि इतना प्रभावशाली नहीं रहेगा। जितना ज्यादा कठिन कोर्स होगा उतना अच्छा नौकरी मिलेगा, उतनी बड़ी डिग्री मिलेगी, उतनी अच्छी नौकरी मिलेगी। आजकल तो बीकॉम बीए ये सब यदि कोई करता है तो ठीक है, कोई साधारण सी नौकरी मिल जाएगी, क्योंकि बीकॉम बीए करने में कुछ अधिक परिश्रम नहीं करना पड़ता। परंतु यदि कोई, कल एक स्टूडेंट मुझे पूछ रहा था कि मुझे कुछ बनना है इस संसार में, मुझे एमबीए बनना है। बंबई में तो एक व्यक्ति, इधर ऊपर एमबीए लिखा हुआ था और नीचे लिखा था महा बेकार आदमी। तो कि उसके अनुसार उसने एमबीए किया और उसके बाद बहुत बेकार हो गया। तो कल वो विद्यार्थी पूछ रहा था मुझसे कि मुझे एमबीए करना है तो, और भक्ति भी करनी है, तो भक्ति भी करनी है और एमबीए भी करना है और क्या क्या करना है, मुझे संसार में समाज में दिखाना है कि मैं भी कुछ कर सकता हूं ये सब। तो जब जितना कठिन कोई कोर्स होता है तो उसका प्रभाव उतना अधिक माना जाता है कि नहीं? तो इसलिए ज्यादातर लोग जब ये सुनते हैं कि आपके भक्ति योग में केवल श्रवण करो या आपका कीर्तन करो, जप करो, हरे कृष्ण मंत्र करो, उससे आप गोलोक वृंदावन आप प्राप्त कर पाओगे, ये सब ऐसे थोड़ी हो सकता है। इतना सरल भगवत प्राप्ति कैसे हो सकती है? कुछ कठिन परिश्रम यदि हो, जैसे लोग जब कुछ किसी आध्यात्मिक प्रवचन में जाते हैं तो यदि सरलता से सब कुछ समझाया जाए तो लोगों को विश्वास नहीं होता, इतना सरल कैसे हो सकता है? कि आप कह रहे हैं कि केवल ये जप कीजिए, शरीर नहीं आत्मा है, और केवल प्रसाद खाइए और आप भगवत धाम चले जाएं, इतना सरल नहीं हो सकता। तो ज्यादातर लोग कलयुग में वो क्या मानते हैं कि आध्यात्मिक सत्संग में यदि हम गए हैं तो जितना कठिन हो समझना उतना ज्यादा प्रभावशाली होगा वो पथ। प्रवचन में बैठे रहेंगे और उसके बाद में पूछिए आपको क्या समझ में आया प्रवचन में, नहीं प्रवचन बहुत अच्छा था, नहीं क्या समझ में आया, नहीं प्रवचन बहुत अच्छा था, नहीं लेकिन आप उसमें से क्या सीखे, वक्ता ने क्या कहा, वो इस प्रकार से कह रहा था, क्या बताऊं अब, कि शब्द नहीं बताने के लिए। तो लोग अधिकतर यही सोचते हैं कि जितना ज्यादा कठिन और क्लिष्ट भाषा हम बोलें उतना अधिक वो प्रभावशाली हो पाएगा या होगा वो पथ। परंतु 11वें स्कंद में भक्ति मार्ग के विषय में कहा गया है कि भक्ति मार्ग इतना सरल है कि यदि कोई व्यक्ति को किसी कोई हाईवे में खड़ा कर दे और उसकी आंख पर पट्टी बांध दे और उसे कहे कि अब दौड़ना शुरू करो, तो यदि हम उसकी कल्पना भी करें कि आंख पर पट्टी बांधी हुई है और कहा है कि चलो मत दौड़ो, तो कितना, जब लाइट चली जाती है तो तुरंत हम एक कदम लेने में कितने सावधान हो जाते हैं। परंतु यहां पर कहा गया है कि आपको एक ऐसे पथ पर खड़ा किया गया है जहां पर आपकी आंख पर पट्टी बांधी हुई है और यदि आप जोर से दौड़ना भी शुरू करो, न पतेत न स्खलित कहा गया है, न आप वहां पर फिसलोगे न गिरोगे, कुछ नहीं होगा। तो यदि मान लीजिए कोई ऐसा रोड है, कोई ऐसा रास्ता है जो इतना चौड़ा है जिसमें एक कंकर नहीं, एक पेड़ नहीं, कोई गाड़ी नहीं चल रही, कोई व्यक्ति नहीं जो आपको बीच में रोकेगा, और ऐसे चौड़े रास्ते पर यदि आपको पट्टी बांधकर कहा जाए कि अभी भागो इस रास्ते पर, तो निडर होके आप भाग सकोगे जब आपको मालूम है कि यहां पर कोई शंका नहीं कि मैं कहीं पर किसी पर भिड़ जाऊंगा या गिर जाऊंगा कहीं पर। तो 11वें स्कंद में कहा गया है कि यह भक्ति मार्ग है कि जहां पर यदि पट्टी बांध कर भी, आंख बंद कर भी, इसका मतलब ये है, आंख बंद कर भी मतलब यदि जप में नींद भी आती रहे, यदि प्रवचन में नींद भी आती रहे, तो भी वो व्यक्ति उसका उद्धार हो जाएगा। जैसे हम उदाहरण दे रहे थे, बंबई में बम विस्फोट हुआ था, वो एक हमारे भक्त ट्रेन में उसी बोगी में बैठे थे जिस बोगी में बम रखा हुआ था, और वो कह रहे थे, वो जप करना शुरू किए। अब कई बार जब जप शुरू करते हैं तो कई बार नींद आती है कि अक्सर नींद आती है या कभी कभी नींद आती है? तो जैसे नींद आना शुरू होती है। तो ये भक्त बता रहे थे कि जैसे ही उन्होंने ट्रेन में जप करना शुरू, और वो भी ट्रेन में, तो ट्रेन में और वो भी मुंबई की लोकल ट्रेन में, जब आप बैठ जाए जप करने के लिए, तो झूले के समान, जैसे माता यशोदा कृष्ण को झूला झुलाए करती थी, तो झूले के समान उसका अनुभव होता है। तो झूले के समान वो ट्रेन झुलाती रहती है। तो वो जब करते करते उनको नींद आ रही थी। इससे पहले उन्होंने कहा कि जब वो ट्रेन में, उस बोगी, फर्स्ट क्लास बोगी में जिसमें वो बम रखा हुआ था, उसमें वो गए, तो एक बूढ़ा व्यक्ति उसके बगल में वो बैठने जा रहे थे। तो बूढ़े व्यक्ति ने अचानक बिना कोई कारण के, ट्रेन बोगी खाली था, बिना कोई कारण के कहा कि वहां जाके बैठो। और ज्यादातर लोकल ट्रेन में लोग दूसरों की सुनते नहीं हैं, सुनाते हैं। परंतु ये भक्त ने सोचा ठीक है, इस व्यक्ति को यदि तकलीफ है, मैं यहां बैठूं तो मैं वहां जाके बैठ जाता। और वो बूढ़ा व्यक्ति जहां पर बैठा था वहीं पर बम रखा हुआ था। तो भगवान ने उस बूढ़े व्यक्ति के द्वारा कहा कि जाकर थोड़ा दूर बैठो। तो बूढ़े व्यक्ति, पता नहीं उसने अपना जीवन इस भक्त के लिए न्योछावर कर दिया होगा। तो भक्त जाकर वो कंपार्टमेंट के दूसरे कोने में बैठ गया, वहां पर जप करना शुरू किया। तो वो थोड़ा नींद आ रही थी, तो नींद आ रही थी तो धीरे धीरे उनका सर भी नीचे जा रहा था। और वो बता रहे थे कि जब उनका पूरा सर नींद में इस प्रकार से नीचे गया, तब बम विस्फोट हुआ, और वो जितने भी बम के चिथड़े थे वो उनके शरीर के ऊपर से गए, क्योंकि शरीर नीचे झुका हुआ था, तो उनके सर और पीठ के ऊपर से वो सारे बम के चिथड़े गए। और वो कह रहे थे कि यदि मैं जगा हुआ रहता तो वो सारे बम के चिथड़े मेरे चेहरे पर लगते, और कोई आशंका नहीं थी मेरी जीवित रहने की। तो मतलब यदि जप में हम सो भी जाएं तो भगवान बचा लेते हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि हमको अब इसका प्रयास करना चाहिए कि जब भी मैं बाहर जाऊं या ट्रेन में, हो सकता है आजकल तो मंदिरों में भी लगा देते हैं, तो मंदिर में भी मैं, भगवान बचाएंगे तो इसलिए मैं थोड़ा ऊपर नीचे होता रहूंगा। हालांकि उसको प्रयास करने में आवश्यकता नहीं है, बहुत हम निपुण हैं उसमें। इतने निपुण हैं कि लोग बताते हैं फिर भी बताने पर तो और ज्यादा क्रोध आता है कि तुमको लगता है मैं सो रहा हूं। तो कई बार अहंकार इतना तीव्र रहता है अंदर कि कोई जब उठाता है तो तुरंत तो दुर्वास मुनि बन जाते हैं। तो भक्ति मार्ग की विशेषता यहां पर नारद मुनि सुना रहे हैं व्यासदेव जी को, कि नारद मुनि छोटे से थे, केवल 5 वर्ष के थे नारद मुनि, और 5 वर्ष का बालक वो, ये जो भक्ति वेदांत थे, इनकी सेवा में लगे थे वो। और क्या सेवा, जब वो भोजन इत्यादि हो जाता था, उनका प्रसाद हो जाता था, तो वहां पर साफ सफाई करना, उनको भोजन देते रहना, साफ सफाई करना। और जब वो साफ सफाई करते थे उस समय ये सारे जो महानुभाव बैठकर भगवत चर्चा किया करते थे, तो केवल उतना श्रवण उनका हुआ। ऐसा नहीं कि उनके क्लास में जाकर वो बैठा करते थे। यहां पर तो हमने कितनी क्लासें बैठकर अटेंड कर चुके हैं, घंटों घंटों, परंतु नारद मुनि का श्रवण कितना था? नारद मुनि का श्रवण केवल जब वो साफ सफाई करने, वहां उनकी सेवा करने, और वो केवल वो सुन लेते थे कि वो क्या उनकी चर्चा चल रही है, बस उतना ही उनका श्रवण था। और उससे इतनी परिपक्व उनकी भक्ति हो गई। प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज के विषय में तो कहा गया है कि उनका श्रवण कहाँ हुआ? उनकी माता के गर्भ में। अब देखिए कौन सी टेक्नोलॉजी है आज की दुनिया में कि जो माता के गर्भ के शिशु को उसके साथ कॉन्वर्सेशन कर सके। नारद मुनि, वही नारद मुनि, नारद मुनि प्रहलाद महाराज को भागवत कथा सुना रहे हैं जब प्रहलाद महाराज गर्भ में थे। तो आजकल वैज्ञानिक गर्व करते होंगे अपने टेक्नोलॉजी के ऊपर कि हम पता लगा सकते हैं कि गर्भ में शिशु अब कितना बड़ा हो गया है। ऐसी टेक्नोलॉजी है, पता लगा देते हैं कि कितना शिशु बड़ा हो गया है। शिशु क्या है, कोई पुत्री पैदा होने वाली है कि पुत्र पैदा होने वाला है, ये सब पता लगा लेते हैं। परंतु यहां पर देखिए भागवत की टेक्नोलॉजी कि नारद मुनि गर्भ में प्रहलाद महाराज के साथ वहां तक नेटवर्क पहुंच गया उनका कि वहां पर भागवत कथा प्रहलाद महाराज को सुना रहे हैं और प्रहलाद महाराज, और वो बहुत अच्छी जगह है भागवत कथा सुनने के लिए क्योंकि वो ऐसे पोजीशन में शिशु रहता है गर्भ में कि वहां पर कोई आशंका नहीं कि कोई व्यक्ति को डुलकी आए, नींद आए, क्योंकि इतनी तकलीफ होती है चारों तरफ। तो इसलिए कयाधु जो उनकी माता थी उसका श्रवण इतना पक्का नहीं था जितना प्रहलाद महाराज का था। इसलिए प्रहलाद महाराज पैदा होते ही उन्होंने प्रचार प्रचीन प्रोग्राम शुरू कर दिया क्योंकि भक्त प्रोग्राम ऑलरेडी अंदर हो गया था उनका इसलिए बाहर आते ही उन्होंने प्रचार शुरू कर दिया। परंतु वही भागवत कथा कयाधु ने भी सुनी, परंतु कयाधु उस प्रकार से भगवत भक्त नहीं बनी। तो यही यहां पर नारद मुनि अपने उदाहरण से व्यासदेव जी को बता रहे हैं कि भागवत कथा का प्रभाव इतना है कि मैंने जो थोड़ा बहुत श्रवण किया वो ब्रह्मा जी के एक दिन के काल तक मुझे याद रहा। तो इसलिए हम सत्संग के विषय में इतना सुनते हैं और इतना हम दूसरों को प्रचार करते हैं कि आइए सत्संग में, इतना हम प्रचार कर करके लोगों को लाते हैं सत्संग में, परंतु हमें यह समझ लेना चाहिए कि हम जब सत्संग में आते हैं तो सत्संग में वास्तविक रूप में ये श्रवण का प्रभाव हमारे ऊपर होना चाहिए। जब तक ये श्रवण का प्रभाव हमारे ऊपर नहीं होगा तब तक ये सत्संग वास्तविक रूप में सत्संग नहीं रहेगा। क्योंकि कई बार लोग ये सोचते हैं कि जब मैं भक्तों का संग करूंगा, मंदिर में जाकर भक्तों का संग करूंगा, तो अपने आप मेरी आध्यात्मिक प्रगति होनी चाहिए। भक्तों का संग केवल ये नहीं कि मंदिर में आके भक्तों को हरे कृष्णा कह दिया, उनके साथ बैठकर प्रसाद खा लिया और बस इतना ही, उनका संग हो गया तो ये मान लिया कि आज का मेरा भक्तों का संग का कोटा पूरा हुआ। इसलिए शंकराचार्य एक सुंदर श्लोक में कहते हैं, सत्संगत्वे निस्संगत्वा, निस्संगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे निश्चल तत्वम, निश्चल तत्वे जीवन मुक्ति। कि सत्संग में आने का महत्व क्या है या परिणाम क्या होना चाहिए कि सबसे पहले हमारा दुस्संग कम होना चाहिए। निस्संग, जो बुरा संग है बाहर का, वो कम होना चाहिए। और सबसे बड़ा बुरा संग है हमारे अंदर के बुरे इच्छाओं का। हमारे अंदर जो बुरी इच्छाएं पनप रही हैं वो सबसे बड़ा बुरा संग है, सबसे बड़ा दुस्संग है। इससे बड़ा दुस्संग और कुछ नहीं। तो वो कम होना चाहिए, वो भौतिक इच्छाएं कम होनी चाहिए जब हम सत्संग में आते हैं। और फिर वो आगे कहते हैं कि जब ये भौतिक इच्छाएं कम होंगी तो निर्मोहत्वम, तो इस संसार का जो मोह है वो मोह धीरे धीरे कम होना शुरू होगा, आसक्ति इस भौतिक संसार में। और जब आसक्ति कम होगी तब फिर ये जो भगवत ज्ञान है इसमें निश्चलता आएगी। और जब निश्चलता आएगी इस भगवत ज्ञान में, तब जीवन मुक्ति। तो जीवन मुक्ति एक प्रकार से इतने आसान नहीं है। जैसे कि हमने कह दिया कि भक्ति का मार्ग बहुत सरल है, और कई बार हम उदाहरण देते हैं भगवान श्री कृष्ण का वो श्लोक, और प्रभुपाद जी भी बहुत बार से ये उदाहरण दिए हैं कि भक्ति मार्ग इतना सरल है, पत्थरम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति, कि क्या करना है, केवल एक पत्ता, एक पुष्प, एक फल, एक एक है केवल ये। हमारे एक भक्त वो गोवा के हैं, वो कह रहे थे उनके एक बेटे ब्रह्मचारी बन गए हैं हमारे मंदिर में, तो वो कह रहे थे कि मेरे लिए ये जो श्लोक है पत्रम पुष्पम फलम तोयम, मैं इसे कहता हूं पुत्रम, पुत्रम पुष्पम फलम तोयम, कि मेरे जितने भी उनके और भी एक पुत्र हैं, बोले कि ये भी भगवान की सेवा में लग जाए तो और भी अच्छा है। और फिर यहां तक उन्होंने कह दिया कि यदि मुझे पहले पता होता तो मैं शादी भी नहीं करता, मैं खुद आ जाता, यहां तक वो कहते हैं। तो उन्होंने कहा मेरे लिए जो श्लोक है वो पुत्रम पुष्पम है, कि अपना पुत्र दो भगवान की सेवा में। तो सोच समझ के श्लोक भी बोलना चाहिए। यदि हम तैयार नहीं तो ठीक है, पत्रम पुष्पम। तो प्रभुपाद जी इस उदाहरण को लेकर कहा करते थे कि कितना सरल है। एक बार प्रभुपाद जी जुहू मंदिर जब बन रहा था, तो वहां पर जब वहां पर अभी इमारत खड़ी नहीं हुई थी मंदिर की, और एक कंस्ट्रक्शन साइट था वो, तो प्रभुपाद जी एक छोटे से कमरे में से वहां बनाया हुआ, तो वहां बैठे थे और कई लाइफ मेंबर बैठे थे, और वहां पर वो कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही थी कि कितना और पैसा और इकट्ठा करना है और इतना बड़ा प्रोजेक्ट कैसे उसके आगे आगे बढ़ाना है। तो उसके बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही थी। तो ऐसा हुआ कि जब मीटिंग चल रही थी, बीच में एक मजदूर जो बाहर काम कर रहा था, सीमेंट का काम कर रहा था वो, तो पूरा उसका उसके जो कपड़े थे वो धूली में ओतप्रोत थे, तो वो मजदूर वो मीटिंग के बीच में अंदर घुसा। तो अब देखिए, इस प्रकार का व्यक्ति, ऐसे इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही है, प्रभुपाद जी सब लाइफ मेंबर्स के साथ बैठे हैं और वरिष्ठ सन्यासी बैठे हैं, और ये मजदूर अंदर घुसता है, तो सभी शांत हो गए, देखने लगे कि ये क्या चाहता, क्या है, क्या इसकी चेष्टा, क्या कर रहा है। तो ये मजदूर अंदर घुसा, प्रभुपाद जी के सामने आया और एक फूल लाकर रख दिया, और प्रभुपाद जी को दंडवत कर बाहर चला गया। तो प्रभुपाद जी ने कहा, देखो, फिर प्रभुपाद जी ने यही श्लोक कहा, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, कि देखो ये व्यक्ति ने केवल एक फूल लाकर यहां पर मुझे अर्पित किया, और हम सब के हृदय में कितनी सहानुभूति तुरंत जागृत हो गई इस व्यक्ति के प्रति। तो हम तो तुच्छ जीवात्मा है, यदि हमारे अंदर एक व्यक्ति के प्रति जो एक फूल अर्पित करता है इतनी सहानुभूति जागृत हो सकती है, तो सोचिए भगवान का हृदय जो कितना विशाल है, जिनके अंदर इतनी करुणा भरी हुई है। हे कृष्ण करुणा सिंधु, एक सिंधु के समान इतनी करुणा उनके अंदर है। तो यदि कोई भक्त उनका एक पुष्प लाकर अर्पित करता है भगवान को, उन भगवान को, तो उनके अंदर कितनी करुणा जागृत होती होगी उस भक्त के प्रति। जब यहां पर एक मजदूर मुझ जैसे जीवात्मा को लाकर एक पुष्प अर्पित करता है, तो हम सब के अंदर कितनी करुणा और सहानुभूति जागृत हो गई इस व्यक्ति के प्रति। तो प्रभुपाद जी श्लोक को बहुत बार कहा करते थे, और वो कहा करते थे इस मुद्दे को लेकर कि भक्ति कितनी सरल है, कि आप एक पत्र, एक पुष्प, पत्राणी पुष्पानी नहीं कहा है भगवान ने, ये नहीं कहा कि बहुत सारे पत्ते, केवल एक पत्ता। एक हमारे भक्त तो मंदिर के लिए फंड रेजिंग कर रहे थे, तो वो कह रहे थे कि पत्ते का अर्थ वो पत्ता भी है, 10 रुपए का पत्ता, 100 रुपए का पत्ता। तो जीव गोस्वामी वो अपनी टीका में कहते हैं कि विशेष रूप से इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण जब वो कह रहे हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम, तो भगवान श्री कृष्ण वो इतने भाव विभोर हो गए हैं अपने भक्त की भक्ति को देखकर कि वो इस श्लोक में वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पा रहे कि क्या चीज खाने लायक है और क्या चीज सूंघने लायक है। अब इस श्लोक में भगवान ने कहा कि पत्र पत्ता जो है ठीक है, कोई व्यक्ति खाता है पत्ते को, पुष्प जो है उसे खाया नहीं जाता, पुष्प को सूंघा जाता है। परंतु भगवान इस श्लोक में क्या कहते हैं, अश्नामी प्रयतात्मना, अश्नामी का अर्थ है मैं खाता हूं। तो भगवान जीव गोस्वामी कहते हैं कि भगवान इतने भाव विभोर हो गए कि बाकी तो ठीक है, जल बंगाल में भी खाया जाता है उसे, हा? तो जल को पिया जाता है या खाया जाता है जो भी, हा? जल खावेन कहा जाता है ऐसे। तो तोयम जल जो है उसे भी अंदर लिया, अंदर ग्रहण किया जाता है, और जो फल है उसे भी खाया जाता है, जो एक पत्ता है उसे भी खाया जाता है, परंतु पुष्प को कोई खाता नहीं, पुष्प को तो सूंघा जाता है। हालांकि एक बार भगवान श्री कृष्ण को उनके सखाओं ने पुष्प दे दिया था उनके मुंह में, ऐसे मजाक में भगवान को कहा कि अपना मुख खोलो और बहुत सुंदर लड्डू मैं लाया हूं घर से, परंतु आंख बंद कर अगर मुंह खोलना होगा। तो भगवान तो अंतर्यामी सब कुछ जान गए कि भगवान ये नहीं जानते कि क्या लाया, भगवान तो ये सब जानते कि इस पूरे संसार में कौन कहां कितने लड्डू बना रहा है, कितने लड्डू बना रहा है, कितने लड्डू बनने वाले हैं, कितने लड्डू बन चुके हैं, सब कुछ जानते हैं भगवान। परंतु भगवान ने सोचा कि यदि ये ग्वाल बाल प्रसन्न हो जाएगा तो ठीक है, मैं अपनी आंख बंद कर मुंह खोल लेता हूं। तो भगवान ने आंख बंद कर मुंह खोला, तो एक ग्वाल बाल ने एक फूल अंदर डाल दिया। तो भगवान जब उसे चबाना शुरू किया, अरे क्या डाला अंदर मुंह में, लड्डू कहकर फूल डाल दिया, और भगवान अपना मुंह टेढ़ा कर उसे डांटने लगे दिखाने के लिए कि ठीक है तुम यदि इसमें प्रसन्न हो जाते हो मैं फूल भी खा लूंगा। तो यहां पर जी गोस्वामी कहते हैं कि भगवान इतने भाव विभोर हो गए कि भगवान कह रहे हैं कि ठीक है फूल भी यदि कोई मुझे अर्पण करता है तो उससे भी मैं खा लूंगा अंदर। तो हम इस श्लोक को कहते हैं कि भक्ति का मार्ग इतना सरल है कि केवल ये सब चीजें हम अर्पित करें भगवान को, परंतु इसके साथ भगवान क्या कह रहे हैं, केवल एक चीज चाहिए, आप शुद्ध भक्त होना चाहिए, है कि नहीं? दो बार इसलिए भक्ति कहा गया है, भक्ति शब्द को दो बार इस श्लोक में कहा गया है कि केवल एक पत्ता, केवल एक पुष्प फल और उसके साथ आपकी शुद्ध भक्ति। तो सरल है ना बहुत। तो पत्ता और फल और तोयम ये सब तो इकट्ठा करना बहुत सरल है, परंतु शुद्ध भक्त बनना, शुद्ध भक्त बनना पता नहीं कितने जन्म लग जाएंगे। तो इसलिए जब हम भगवान को भोग अर्पित करते हैं घर में या मंदिर में, तो कटोरी में रखते हैं दाल चावल सब्जी सब इत्यादि, तो एक कटोरी होनी चाहिए हमारी भक्ति की भी, कि एक कटोरी में हमारी भक्ति भी रखनी चाहिए, क्योंकि यदि वो कटोरी नहीं है तो बाकी सब कटोरी भगवान देखेंगे भी नहीं। तो विशेष रूप से भगवान को यदि हमें प्रसन्न करना है भक्ति के मार्ग में, तो कोई भी ऐश्वर्य इस संसार का भगवान को प्रभावित नहीं कर सकता। हम अपना प्रवचन से भगवान को प्रभावित करेंगे, मान लीजिए हम प्रवचन दे रहे हैं और यहां पर भगवान है, तो भगवान हमारा टूटा फूटा प्रवचन सुन रहे हैं, असली जो प्रवक्ता है वो तो भगवान है, तो क्या हम अपने प्रवचन से भगवान को प्रभावित कर पाएंगे? क्या अपने कीर्तन से हम भगवान को प्रभावित कर पाएंगे? क्या अपने और जो हमारे जितने भी गुण हैं, भोजन बनाने का गुण या ड्यूटी ड्रेसिंग का गुण या खुद के ड्रेसिंग का गुण, जो भी क्या उससे हम भगवान को प्रभावित कर पाएंगे? भगवान प्रभावित होते हैं केवल उस भक्ति से। इसलिए भक्तिर तुष्टति केवलैर नच गुणैर भक्ति प्रियो माधव, कि भगवान और माधव जो हैं वो और किसी वस्तु से वो आकर्षित नहीं होते इस संसार से। इस संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं है, आध्यात्मिक संसार में भी कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो भगवान को आकर्षित कर सके। केवल एक ही है, वो है भक्ति। इसीलिए श्रीमती राधारानी को कहा गया है मदन मोहन मोहिनी, कि वो मदन मोहन जो मदन को मोहित कर रहे हैं, इस संसार की जितनी भी मोहित वस्तुएं हैं वो सब मदन कामदेव जो है उसके अधीन है, और वो कामदेव जी अधीन है मोहन के, इसलिए उनको मदन मोहन कहा गया है, और वो मदन मोहन अधीन है राधा रानी के, मदन मोहन मोहिनी इसलिए कहा गया है। और क्यों उनको मदन मोहन मोहिनी कहा गया है? क्योंकि उनके अंदर वो भक्ति है, केवल वो भक्ति के वजह से वो भगवान को मोहित कर पा रही है। इसलिए यहां पर भी नारद मुनि वो अपना गुणगान नहीं कर रहे, वो गुणगान कर रहे हैं भक्ति मार्ग का, कि भक्ति मार्ग भक्ति योग के वजह से मेरे अंदर इतनी स्मरण शक्ति आई कि मुझे याद रहा और भगवान ने मुझे आश्वासन दिया कि मैं अपना दर्शन अवश्य दूंगा जब तुम तुम्हारी भक्ति में परिपक्व हो जाओगे। तब हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न? इस कार्तिक महीने की जो विशेष लीला हुई उसकी चर्चा करेंगे, श्री दामोदर लीला, जिसके अंदर भी केवल एक ही चीज भगवान को बांध पाई और वो थी माता यशोदा की भक्ति। ये नहीं था कि रस्सी के वजह से भगवान बंधे, कोई रस्सी इस भौतिक संसार की भगवान को बांध नहीं सकती, केवल यशोदा माई की भक्ति ने भगवान को बांधा, तो उसकी चर्चा हम शाम को करेंगे। कौन कौन प्रचार करते हैं?
प्रजापिता ब्रह्म कुमारी, सो दे आर यूजिंग दिस एग्जांपल टू प्रोपगेट देयर फिलॉसफी दैट हाउ ह्यूमन बीइंग्स दे आर बोर्न अगेन इन ह्यूमन बॉडीज। सो यू नो हाउ कैन वी रिप्यूट दिस, दे आर यूजिंग दिस एग्जांपल फॉर दिस।
नहीं तो वो तो केवल एक जन्म हुआ, नहीं नहीं ऐसे ऐसे भी उदाहरण हैं, परंतु क्योंकि पशु का जीवन में उनकी चेतना इतनी विकसित नहीं रहती कि उनकी जो आसक्ति है वो बहुत स्थूल स्तर पर रहती है उनकी आसक्ति। इसीलिए एक पशु जब मनुष्य बनता है तो ये उदाहरण हो सकता है कि एक मनुष्य अपना पशु का जीवन भी याद रखे, परंतु इसकी संभावना बहुत कम है क्योंकि पशु की जो चेतना है वो विकसित नहीं रहती, और विकसित चेतना न होने के कारण वो आसक्ति जो है वो इतनी विकसित नहीं रहती जितनी मनुष्य की आसक्ति रहती है अपने शरीर से और अपने परिवार वालों से। अब देखिए, एक जो पशु रहता है उसकी आसक्ति इंद्रिय भोग से बहुत ही स्थूल स्तर पर रहती है। कभी सुना है पशु ने आत्महत्या की? कि कुत्ता बहुत परेशान है जीवन में कि अच्छा खाने को नहीं मिल रहा तो बालकनी से कूद जाऊं अभी मैं। कभी सुना है कि पशुओं ने आत्महत्या की? नहीं करते कभी, क्योंकि उनकी चेतना इतनी विकसित नहीं कि वो इस प्रकार के उपाय ढूंढ सके कि अपने आप को खत्म कर दें ताकि ये जो तकलीफें हैं वो भी खत्म हो जाए उसके साथ। स्ट्रेस मैनेजमेंट सेमिनार किसी पशु के लिए लिया जाता है कि उनको बहुत स्ट्रेस हो गया है इसलिए उनके लिए एक सेमिनार लिया जाएगा। कुत्ते बिल्लियों के लिए स्ट्रेस मैनेजमेंट सेमिनार नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हमारी चेतना विकसित है, और क्योंकि हमारी चेतना विकसित है इसलिए हमारी आसक्ति भी पशुओं से बहुत अधिक है इस संसार में। इसीलिए ये आसक्ति जो स्वाभाविक है उसको यदि भगवान में परिणित कर दिया जाए, भगवान की तरफ, तो वही आसक्ति हमको भगवत धाम ले जा सकती। तो यदि कोई व्यक्ति ये कहे कि आप कैसे कह सकते हैं कि केवल मनुष्य ही अपने मनुष्य योनि को याद रख सकता है, सबसे पहले तो एक मनुष्य अपने अलग जन्म में मनुष्य बन सकता है, ऐसा शास्त्र ये नहीं कहता कि हर मनुष्य को जानवर ही बनना है यदि वो भक्त नहीं बना, नहीं, वो मनुष्य बन सकता है। और ये जरूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति मनुष्य बन गया है तो उसको अपना पिछला पशु जीवन याद रखना जरूरी है। और शास्त्रों में उदाहरण है कि यहां तक कि मनुष्य अपना पशु जीवन याद रखे ये तो दूर की बात है, भागवत में क्या उदाहरण है कि मनुष्य पशु बन गया है और अपना मनुष्य जीवन याद रखा है, तो उसको क्या कहेंगे ये अब? तो भागवत तो दूसरे और आगे एक और कदम आगे चला गया कि भागवत कहता है गजेंद्र अपने पिछले जन्म में इंद्रदुम्न महाराज थे और बहुत बड़े भक्त थे भगवान के, परंतु जब उस ग्राह ने डस्क लिया गजेंद्र को, उस मगरमच्छ ने, तो गजेंद्र ने अपने पिछले जन्म में उन्होंने जो भक्ति की थी वो सारी स्तुतियां वो उनको याद आई एक हाथी के शरीर में। तो यदि एक हाथी के शरीर में व्यक्ति याद रख सकता है अपना पिछला जन्म, तो ये क्यों संभव नहीं कि एक मनुष्य अपना पिछला जन्म याद रख सकता है? अब इसमें भी देखिए, हाथी अपना पिछला जन्म मनुष्य का ही याद रखा है उसने। भरत महाराज ने जब वो हिरण बने तो उन्होंने भी अपना पिछला जन्म भरत महाराज का याद रखा, और जड़ भरत ने अपना पिछला जन्म हिरण का भी और भरत महाराज का भी याद रखा, दोनों। ये उदाहरण है, देखिए, ये तो एक और जन्म पीछे चले गए। जड़ भरत ने दोनों जन्म याद रखा, भरत महाराज में जो उसमें जो गलती की थी, फिर हिरण के इसमें आ गए उसमें, और फिर जड़ भरत, तो इसलिए उन्होंने निश्चित कर लिया है कि बिल्कुल माया के निकट भी नहीं रहना मुझे। तो ये भागवत में उदाहरण है, तो ये उदाहरण बता सकते हैं।
Blaspheming our scriptures means agar aise bhi koi hai, they want the examples from this life and they are blaspheming the scriptures. So if they are arguing with us, this happened with me.
To samasya fir hamari hai ki hum unke paas ja kyun rahe hain? Aapke ghar par aake ye sab sunate hain hum aapko. तो सबसे पहला प्रश्न ये है कि क्या वो आध्यात्मवादी हैं कि नास्तिक हैं? आध्यात्मवादी हैं। तो यदि कोई व्यक्ति आध्यात्मवादी है तो कौन से शास्त्र को मानते हैं? जैसे शिल प्रभुपाद जी के पास एक मायावादी आए, तो मायावादी कह रहा था कि भगवान निराकार हैं, भगवान का कोई आकार नहीं, भगवान का कोई गुण नहीं, लीला नहीं। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि देखिए, इस पर विवाद करने से क्या फायदा। मैं कहूंगा कि भगवान साकार हैं, आप कह रहे हैं भगवान निराकार है। हम दोनों को जीने के लिए क्या चाहिए? अन्न चाहिए। प्रभुपाद जी ने कहा हम दोनों को जीने के लिए अन्न चाहिए, और अन्न कहां से मिलेगा? जब वर्षा होगी। और वर्षा कहां से आएगी? जब यज्ञ होगा। और कलयुग में कौन सा यज्ञ है? संकीर्तन यज्ञ। तो तुम जप करो, मैं जप करूंगा, अन्न मिलेगा, पेट भरेगा, ठीक है। चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी। तो सबसे पहले यदि व्यक्ति कहता है, प्रभुपाद जी ने कहा कि तुमको यदि अपना शास्त्र या अपनी किताब छापनी है, छापो, भगवत गीता का नाम मत दो उसको। अपनी नाक भगवत गीता के बीच में मत अड़ाओ, प्रभुपाद जी ने कहा। भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण ने कही। और यदि कोई व्यक्ति कहता है कि हम भगवत गीता का पालन करते हैं परंतु हम कहते हैं कि वो भगवान श्री कृष्ण ने नहीं कही, तो हम कहते हैं कि आप जो कह रहे हैं वो हम आपका क्यों सुने फिर? आप यदि जो भी कहें उसका कोई वैलिडिटी होना चाहिए सबसे पहले। और सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा कि इस कलयुग में बहुत से लोग हैं प्रचार करने के लिए, और हमारे पास समय कम है। तो अपना समय और अपना दिमाग खराब मत कीजिए कुछ ऐसे लोगों के ऊपर कि जब आपको पता है कि ये व्यक्ति कि कौन सी योनि होने वाली अगली, तो ऐसे व्यक्तियों को केवल प्रसाद देना चाहिए, यही एकमात्र उपाय है। और वही प्रभुपाद जी ने भी किया उस मायावादी के साथ। प्रवचन शुरू करना होगा एक और। जो लक्षण गोविंदानंद प्रभु के हैं वो प्रगत भक्त के लक्षण। शास्त्रों में दिया गया है प्रगत भक्त के लक्षण क्या होने चाहिए। जैसे कि भगवद गीता के 13वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि एक जो आत्म साक्षात्कार व्यक्ति है उसके अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए, और 20 गुण बताए गए हैं उसके अंदर। वैसे तो हमारे शास्त्र बताते हैं कि वैष्णव के 26 गुण होते हैं, परंतु वो 26 गुण ऐसा नहीं कि केवल वही सीमित 26 गुण एक वैष्णव में होते हैं। जैसे हम उदाहरण देते हैं कि ये जो अंग्रेजी के अक्षर हैं वो भी 26 हैं, ABCD, परंतु ये 26 अक्षर को यदि हम जोड़ें तो कितने शब्द बन सकते हैं? ये सारे जो शब्द हैं अंग्रेजी के, ये सारे शब्द 26 अक्षरों का जोड़ है, और ये इतने सारे शब्द से कितने वाक्य बनते हैं और इतने वाक्यों से कितनी किताबें बनती। परंतु मूलतः उनके अक्षर केवल 26 हैं। उसी प्रकार से यदि मूलतः किसी वैष्णव के गुण 26 होंगे, परंतु यदि उन गुणों को जोड़ता जाए कोई व्यक्ति, तो जैसे 26 अक्षरों को जोड़ जोड़ कर शब्द बनते हैं, वाक्य बनते हैं, पुस्तकें लिखी जाती हैं, उसी प्रकार के उसके गुण भी अनगिनत हो सकते हैं वैष्णव के, परंतु सबसे बड़ा गुण चैतन्य महाप्रभु अपने उदाहरण से उन्होंने सिखाया, त्रिनादपि सुनिश्चेन तरोर इव सहिष्णुना अमानिन मान देना कीर्तनीय सदाहरि, कि ये एक श्लोक जो है, इस श्लोक को यदि हम पालन करें अपने जीवन में तो हम भक्ति में प्रगति इस प्रकार से कर सकते हैं कि हमें प्रगत भक्त नहीं बनना, हमें हमारी भक्ति प्रगत बनानी है। तो प्रश्न यह होना चाहिए कि भक्ति को कैसे मैं प्रगत बनाऊं। बड़ा भक्त तो हम सब बनना चाहते हैं, परंतु चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं कि जो तृण से भी अधिक नम्र है, जो एक तरु से भी अधिक सहिष्णु है, वो व्यक्ति नित्य रूप से मेरा कीर्तन कर सकता है, और जो नित्य रूप से मेरा कीर्तन करेगा उसमें सारे दिव्य गुण आ सकते हैं। तो यदि हमें हमारे अंदर सारे दिव्य गुण लाने हैं जो भगवान की सेवा में उपयोग में लाएं हम, तो उसके लिए हमें कीर्तनीय सदाहरि में रहना होगा, और कीर्तनीय सदाहरि कब कर पाएंगे, जब त्रिनादपि सुनिश्चय न रहेंगे। ये संक्षिप्त रूप में हम 5 मिनट में आपको कह सकते, और हम जानते हैं कि ये सब प्रश्न आप दूसरों के लिए पूछ रहे हैं, प्रभु जी तो बहुत प्रगत भक्त हैं, सारे वैष्णव गुण प्रभु जी के अंदर बहुत अच्छी से पाए गए, इसलिए हम प्रयास कर रहे हैं कि कुछ गोविंदानंद प्रभु के जैसे गुण हमारे अंदर भी आए। और कोई प्रश्न किसी का? अनन्यता है प्रभु, जैसे देखिए अनन्यता है प्रभु के अंदर इतने दिव्य गुण हैं, वो बांसुरी बजा पा सकते हैं, वीणा बजा सकते हैं, हारमोनियम बजा सकते हैं, इतना अच्छा कीर्तन कर सकते हैं। नहीं, ये सब इसलिए कहा गया है कि एक वैष्णव के अंदर सारे दिव्य गुण आते हैं, है कि नहीं? हराव भक्त से कुतो महद गुना, कि यदि भक्ति नहीं है तो कुछ गुण नहीं है, परंतु यदि भक्ति है तो समा सते सुरा, सुर के देवताओं के जितने भी गुण हैं वो सब एक भक्त के अंदर आ जाते हैं, इसलिए हमारे अनंत प्रभु के अंदर भी इतने सारे गुण हैं। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, वैष्णव ठाकुर की जय,
इस ग्रह शिक्षा अष्टकम प्रभु की जय।